हर हर महादेव। आप सुन रहे श्री रुद्र महिमा और मैं हूँ रोहित सिंह। ये वाली जो कहानी, ये कहानी है मौजी भगत के ऊपर। और ये कहानी मैंने सुनी थी एक बार शिव मंदिर पर। एक व्यक्ति जो अपने पहले टाइम पे टीचर थे, उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। और उसके कुछ समय के बाद मैंने ये कहानी पढ़ा था। गीता प्रेस की किताब आती है एक लोटा पानी, जो गीता प्रकाश में प्रकाश होता है, तो वहाँ से मैंने ये कहानी पढ़ी थी। और उसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसका पेज नंबर है 91। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है जिला गुवाहाटी के खागीपुर नामक एक गांव में रहने वाले कहिर की, जो जिसका नाम था मनमोजी भगत। मतलब भगत नाम नहीं था, मनमोजी था, बाद में उसका भगत नाम पड़ गया क्योंकि एक घटना उस साथ बीती थी। जो उसने गाँव में जो काम था जानवर का चराने का, वो काम करता था। और ये समय जो था, उस समय की बात थी जब विदेश से भारत पर काफ़ी आक्रमण हुए थे, काफ़ी हमले हुए थे, जैसे इस्लामी आतंकवाद है उस समय, मतलब कि हो रहे थे, अभी भी होते ही हैं, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। तो फिर जो उसका काम था गायों को, जानवरों को चराना, जो जमींदार थे, जानवर थे, उन्हें वो चराता था। और उस समय जिसकी कहानी है मनमोजी, उसके ना पिता थे ना माँ थी, पर वो स्वतंत्र था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। जिस बात को सच मानता, फिर चाहे वह एक कदम गलत ही क्यों ना हो, चींटी सा चिपट जाता था। आज उसने सत्य मान लिया है, सत्य के साथ सरूप पे हो जाने की आदत मौजी में थी। यानी कि अगर सच मान लिया तो बस खत्म कहानी, अब वो सच में ही रहेगा। मतलब एक तरह कह सकते हैं उस सत्य व्रत का पालन करने वाला था, लेकिन उसमें सत्य और असत्य की निर्णय शक्ति उसमें नहीं थी। कौन सा सत्य है, क्या सत्य नहीं है, क्या असत्य है, क्योंकि वह सत्संगहीन था। कभी पढ़ा नहीं, कभी लिखा नहीं, ना ही कभी सत्संग किया, तो उसे सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये भी पता नहीं था। अब बात ऐसी भी है कि संसार में जो सत्य है और असत्य से दूध और पानी तरह मिला दिया गया है। काफ़ी लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जिनका सत्य हमें बाद में पीछे जाकर मालूम चलता है, और इसीलिए शायद काफ़ी लोग धोखा भी खाते हैं, क्योंकि अपना वो सत्य पाते हैं, सत्य जो है सच को मानने नहीं चाहते हैं वो। ये कहानी भी है, और ये भी है कि जो असल और नकली चीज़ जो है उसे जानने की शक्ति जो है हमारे शास्त्रों पुराणों ज्ञान से और सत्संग से प्राप्त होती है, कि हम किसे पहचानता है कि हाँ ये सत्य है ये असत्य है। आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मौजी भगत भजन गुनगुना रहा था, हरे राम शंकराय महेश्वर शंभु शिवाय रुद्राय महेश्वर शंभु। और वहाँ पे तभी एक पंडित जी आ पहुँचे। उन्होंने कंधे पे एक झोला और मस्तक पर लंबे तिलक यानी जो अर्धपूर्ण होता है वो लगाया हुआ था। पंडित जी वहाँ ठहर गए, दोपहर हो गया था। अब वो नदी में, पंडित जी ने झोले में से धोती निकाली और स्नान किया नदी में जाके। इसके बाद पथली मार पर बैठ गए, यानी कि जो हमारा एक आसन होता है पालथी मारना, उसे पालथी मार कर बैठ गए। दोनों आँखें बंद कर ली, फिर दाहिने हाथ से दोनों नाक दबा ली, बस देर तक के लिए, थोड़ी सी देर के लिए दोनों नाक दबा के बैठ गए। उन्होंने मूंग के दो लड्डू निकाले, उसके बाद जब नहा लिया, धो लिया, प्राणायाम कर लिया, और उसके बाद दो लड्डू निकाले और खा पीकर चलने को तैयार हुए। और तभी उस आदमी ने देख लिया जो मनमोजी था, और उसने देख के पूछा कि आप ये क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बताया, पहले तो उनमें थोड़ी थोड़ी बात हुई, जैसे पंडित जी ने बोला आशीर्वाद, चल उन्हें आशीर्वाद दिया। मौजी ने बोला आप कहाँ रहते हैं, पंडित ने बोला कि केशामपुर। मौजी आप किधर जा रहे हैं, तो पंडित ने बोला दौलतबाद, वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। मौजी ने बोला रिश ना हो तो एक बात पूछूं, यानी कि आप परेशान ना हो तो। पंडित जी ने पूछो अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे। पंडित जी ने बोला कि भगवान के दर्शन कर रहा था। मौजी ने बोला ठीक, बस पंडित जी एक तरफ चल गए। और उसने जब ये सारी बातों से पूछी थी तो वो भी उनकी देखा देखी स्नान किया, नाक बंद कर लिया, और जैसा उन्होंने किया था बिल्कुल वैसा किया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो प्राणायाम कर रहे थे। तो उसने दो नाक दबा ली लेकिन सांस लिया ही नहीं उसने। अब उसका जो था नहा के जब निकला, बैठ गया पालथी मार कर, नाक बंद की हुई थी, उसका गर्दन घुटने लग गया थोड़ी देर के बाद कि सांस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो बेचैनी तो हो गई शरीर में। तो उसने बहुत कोशिश किया कि नहीं नाक नहीं छुर मचाए, कुछ भी हो जाए। अब ये सब देखते हुए भगवान ने सारा मतलब कि जो था नज़ारा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं है, जो वहाँ मारा जाएगा, इसलिए उसे दर्शन देने के लिए मुझे
वहाँ पे जाना चाहिए। भगवान ने मोजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। आवाज़ सुनकर मोजी ने आंखें खोली और नाक भी छोड़ दी। कुछ देर सांस लेकर वहाँ बोला, आप कौन हैं? और भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ। मोजी बोला, इसका क्या सबूत है कि आप ही भगवान हैं? भगवान ने कहा कि तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। और मोजी ने कहा कि वो पंडित जी ने आपको देखा है, वो आपको जानते हैं, तो मैं उन्हें पकड़ के लाता हूँ, आप यहीं पर रहिए। अब मोजी को विश्वास नहीं हुआ कि कहीं चले गए, तो उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया पैर पर। अब भगवान भी भाव के अधीन है, भक्ति के अधीन, तो उनके प्रेम में बंध जाते हैं। और फिर वो जो मोजी था वो भागते हुए पंडित जी के पास जाता है और उन्हें बीच रास्ते में ही घेर लेता है। जैसे वो रास्ते में मतलब जा रहे होते हैं, तो बहुत दौड़ते भागते कूदते हुए जाता है वो मोजी, और पकड़ लेता पंडित जी को। पंडित जी डर जाते हैं कि कहीं ये मेरा सामान ना लूट ले, कहीं ये लुटेरा ना हो, मतलब कि सुनसान रास्ते में मैं जा रहा हूँ, ये अचानक पीछे पीछे क्यों आया। उन्हें बहुत गड़बड़ लगती है सोचते हुए, लेकिन बुढ़ापा है उनका और वो भाग सकते नहीं, तो भागते नहीं, वहीं पर खड़े रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उससे बच जाए जिस तरह से। और फिर वो पंडित जी से कहता है, जो पंडित जी थे वो मतलब लाचारी कारण कि अब मैं शक्तिहीन हूँ, शक्ति नहीं मुझ में कि इस साथ मतलब कि थोड़ा कुछ इसे मना करूँगा तो फिर ये क्या पता ज़बरदस्ती अपने बल के ऊपर ले जाए मुझे। तो वो बोलते हैं ठीक है, चलता हूँ मैं। और वो फिर पंडित जी को ले जाके वहाँ पे भगवान के सामने खड़ा कर देता है और बोलता है कि देखिए पंडित जी, यही भगवान है ना। अब पंडित जी पूछते कहाँ है, मोजी बोलता है दिन में नहीं सोचता कैसे बंदे हैं यहाँ पे, देखो सामने। अब पंडित जी को लगता है कि थोड़ा सा हिला हुआ है, तो पंडित जी बोल देते थे कि हाँ यही है, और चल देता अपना जान बचाने के लिए बोल देता है, ताकि अगर मैं झूठ बोलूँगा कि मतलब कि अगर मैंने सच बोल लिया कि नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो क्या पता ये मार वार ना दे और थोड़ा अजीब सा लग ही रहा है वैसे भी, तो ऐसे ही बोल देता झूठ बोलता कि हाँ दिख रहे हैं मुझे, यही है। और वो फिर वहाँ से अपना सामान वामान उठा के चल दिए। अब जैसे ही वो जा रहे होते हैं, तो फिर बात होती है मोजी भगत से भगवान की। भगवान, वह पंडित मेरा भक्त नहीं है, उसने पाखंड किया है, भगवान ऐसे बोलते हैं, उसने मुझे देखा ही नहीं है। तो मोजी बोलते हैं कि आप पाखंडी को क्यों दर्शन देते हैं? भगवान ने कहा कि मैंने उसे कभी दर्शन दिया ही नहीं था। मोजी बोला, वाह क्या कहते हैं वो, मैं रोज़ दर्शन किया करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। भगवान, उसने ना तो आज देखा और ना पहले कभी देखा था, वह झूठा है। अमोजी बोलता है कि लेकिन उनके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया, वे पाखंडी ही सही परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान कहते हैं, तुम क्या कहते हो, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। अमोजी बोलता है कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूँ तब आपका दर्शन हुआ करे। अब भगवान बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। अमोजी बोलता है कि एक बात और, आपने अपनी खुशी से दी, एक बात मेरे मांगने से दीजिए। भगवान बोलते हैं मांगो। मोजी बोलता है जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी आपके दर्शन प्राप्त हो। अब भगवान कहते हैं तब तो वहाँ भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन पाने वाले मिथ्याचारी नहीं रह सकते। मोजी तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना उद्धार किया। गुरु ही चेला का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया। अब एक साल के बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से होते हुए किसी कारणवश, या एक तरह कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसे, संयोगवश, उन मनमोजी से मिल लेते हैं। अब पंडित जी जैसे ही उसे देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, गुरु जी प्रणाम। मोजी बोलता है कि गुरु, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया है। और पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया है। अब वो दोनों मिल के आपस में रोने लगते हैं, भगवान का जो परम कृपा थी उससे वशीभूत हो जाते हैं। वो ऐसी कृपा है कि भगवान का दर्शन हो गया है, दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं। ये जो शब्द है शायद इससे समझाने या बताना थोड़ा मुश्किल होगा। अब पंडित जी और मोजी बोलते हैं कि नहीं, आप मेरे भगत हैं क्योंकि आपके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। और मोजी बोलता है, नहीं, आपके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। अब ये सारी बातें चल ही रही होती है, पंडित जी मैंने यजमान का काम पैसा छोड़ दिया ही कहते हैं, और गाय चराने का गाय, और जो मौजी था उसने भी गाय चराने का काम छोड़ दिया होता है, क्योंकि अब उन दोनों का जो लक्ष्य था जब भगवान को देख लिया, मिल लिया, तो अब सांसारिक प्रयोजनों से क्या काम। अब वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हम अब राम नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि बजाय बजाया करना, राम नाम का प्रचार, भजन करना, और यही सब अब हमारा काम रहेगा। दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे, और मैं तुम्हारा भक्त और तुम मेरे भक्त हो। और मौजी बोलता कि हाँ, नाम क्या रखोगे अपना? तो पंडित जी बोलते हैं, तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहीर दास, क्योंकि मेरे गुरु तुम हो और तुम्हारा गुरु मैं हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं, हाँ, गुवाहाटी जिले में दो साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मस्त हो जाते थे और सुनने वाले भी मगन हो जाते थे। भगवान की लीला विचित्र है, भगवान को धन्य है और उनके भक्तों को भी धन्य है।